चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला अध्याय 4 श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति। मैं उन माधवेंद्रपुरी को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्हें श्री गोपीनाथ ने खीर का एक पात्र चुरा कर दिया और तत्पश्चात स्वयं शीर चोरा कहलाए। माधवेंद्रपुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन सिख श्री गोपाल विग्रह ने जन समूह को दर्शन दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। महाप्रभु जगन्नाथ पुरी गए और भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन किए। वे सार्वभौम भट्टाचार्य से भी मिले। इन सब लीलाओं का अत्यंत विस्तृत वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाएं स्वभावतः अत्यंत अद्भुत और मधुर हैं और जब उनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा किया जाता है तब वे अमृत की धारा के समान बन जाती हैं। इसलिए मेरा सविनय निवेदन है कि क्योंकि इन लीलाओं का सुंदर वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा पहले ही हो चुका है, अतएव उन लीलाओं की पुनरावृत्ति दंभ की परिचायक होगी। अतएव ऐसा करना अच्छा नहीं होगा, मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है। अतएव चैतन्य मंगल अब चैतन्य भागवत नाम से विख्यात में वृंदावन दास ठाकुर जिन लीलाओं का पहले से विस्तृत वर्णन कर चुके हैं उन्हें मैं सूत्र रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ लीलाओं का विस्तृत वर्णन नहीं किया है, प्रत्युत सार मात्र दिया है। अतएव मैं इस पुस्तक में उनका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। अतएव मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। मुझे आशा है कि मेरे इस कार्य से उनके चरण कमलों के प्रति अपराध नहीं होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने चार भक्तों सहित जगन्नाथ पुरी की ओर चल पड़े और वे बड़े उत्साह से भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन स्वयं एक गांव में जाते और प्रसाद तैयार करने के लिए चावल तथा अन्य अनाज पर्याप्त मात्रा में मांग लाते। रास्ते में अनेक नदियां पड़ी और हर नदी पर कर एकत्र करने वाला व्यक्ति था, किंतु उसने महाप्रभु को रोका नहीं। महाप्रभु ने भी उन सब पर कृपा की। अंत में वे रेमुणा गांव पहुंचे। रेमुणा के मंदिर में गोपीनाथ का विग्रह अत्यंत आकर्षक था। चैतन्य महाप्रभु ने इस मंदिर में दर्शन किए और अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ विग्रह के चरण कमलों में प्रणाम कर रहे थे तो गोपीनाथ के सिर का पुष्प मुकुट महाप्रभु के मस्तक पर गिर गया। जब अर्चा विग्रह का पुष्प मुकुट उनके मस्तक पर आ गिरा तो श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भक्तों के साथ विभिन्न प्रकार से कीर्तन तथा नर्तन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रगाढ़ प्रेम, उनके अत्युत्तम सौंदर्य तथा उनके दिव्य गुणों को देखकर अर्चा विग्रह के सभी सेवक आश्चर्यचकित रह गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम वश उन सेवकों ने नाना प्रकार से महाप्रभु की सेवा की और उस रात महाप्रभु गोपीनाथ के मंदिर में रुक गए। महाप्रभु वहां इसीलिए रुके थे क्योंकि वे गोपीनाथ विग्रह का खीर प्रसाद पाने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी से यहाँ घटित एक कथा सुन रखी थी। यह विग्रह दूर दूर तक खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से विख्यात था और चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वह कथा सुनाई कि यह विग्रह इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ। पूर्व काल में इस विग्रह ने माधवेंद्रपुरी के लिए शीर का पात्र चुराया था। अब ऐसे शीर चुराने वाले भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार श्री माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए और वहां घूमते घूमते वे गोवर्धन पर्वत पहुंचे। माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम में उन्मत्त रहते थे और उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं रहता था कि दिन है या रात। कभी वे उठ बैठते और कभी भूमि पर गिर पड़ते। उन्हें उचित अथवा अनुचित स्थान में भेद नहीं रहता था। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड गए और वहां स्नान किया। फिर संध्या विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब वे वृक्ष के नीचे बैठे थे तभी एक अज्ञात ग्वाल बाल दूध का पात्र लेकर आया और माधवेंद्रपुरी के सामने पात्र रखकर हंसते हुए उसने इस प्रकार बोला, हे माधवेंद्रपुरी, कृपया मेरे द्वारा लाया हुआ दूध पीजिए। आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लाते? आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं? उस बालक के सौंदर्य को देखकर माधवेंद्रपुरी अत्यधिक संतुष्ट हुए। उसके मीठे वचन सुनकर वे अपनी सारी भूख तथा प्यास भूल गए। माधवेंद्रपुरी ने कहा, तुम कौन हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम कैसे जान पाए कि मैं उपवास कर रहा हूँ? बालक ने उत्तर दिया, महाशय, मैं ग्वाल बाल हूँ और इसी गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे से मांग कर भोजन कर सकता है। कुछ लोग केवल दूध पी कर रहते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से भोजन नहीं मांगता तो मैं उसको खाने की सारी वस्तुएं देता हूँ। पानी लेने आई हुई स्त्रियों ने आपको यहाँ देखा तो उन्होंने यह दूध देकर मुझे आपके पास भेजा है। बालक ने आगे कहा, मुझे शीघ्र ही गायें दुहने जाना है, किंतु मैं लौट कर यह दूध का पात्र आपसे ले जाऊंगा। यह कहकर वह बालक वहां से चला गया। वह बालक अचानक अंतर्धान हो गया तो माधवेंद्रपुरी का मन आश्चर्यचकित हो गया। दूध पीने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी ने पात्र को धोया और एक तरफ रख दिया। फिर वे उस बालक की राह देखते रहे, किंतु वह बालक नहीं लौटा। माधवेंद्रपुरी सो नहीं सके, वे बैठे रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। रात्रि समाप्त होने पर उन्हें थोड़ी जबकि आ गई और उनके सारे बाह्य कार्य रुक गए। माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न में उसी बालक को देखा। वह बालक उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें जंगल में एक कुंज तक ले गया। बालक ने माधवेंद्रपुरी को वह कुंज दिखाया और कहा, मैं इसी कुंज में रहता हूँ। अब एव मुझे कड़ाके की ठंड, बरसती वर्षा, वायु तथा झुलसती गर्मी के कारण अत्यंत कष्ट हो रहा है। कृपा करके गांव के लोगों को लाकर मुझे इस झाड़ी से निकालिए और उनसे कहकर मुझे पर्वत की चोटी पर भली प्रकार से स्थापित कर दीजिए। बालक ने आगे कहा, कृपया उस पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बनवाइए और मुझे उस मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से स्नान कराइए, जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देखता रहा हूँ और सोचता रहा हूँ कि कब माधवेंद्रपुरी यहाँ आकर मेरी सेवा करेगा। मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है। इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। मेरा नाम गोपाल है। मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ। मेरी स्थापना व्रज द्वारा की गई थी और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल के इस कुंज में छिपा दिया। फिर वह आक्रमण के भय से भाग खड़ा हुआ। पुजारी के जाने के बाद से मैं इसी कुंज में रह रहा हूँ। यह अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अब सावधानी से मुझे बाहर निकाल लो। यह कहकर बालक अंतर्धान हो गया। तब माधवेंद्रपुरी जाग गए और अपने स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। माधवेंद्रपुरी पश्चाताप करने लगे, मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखा किंतु मैं उन्हें पहचान न सका। यह कहकर वे प्रेमावेश में भूमि पर गिर पड़े। माधवेंद्रपुरी कुछ समय तक रोते रहे, किंतु उसके बाद उन्होंने गोपाल की आज्ञा का पालन करने पर अपना चित्त स्थिर किया। इस तरह वे शांत हुए। प्रातः काल स्नान करने के बाद माधवेंद्रपुरी गांव में गए और सारे लोगों को एकत्र किया। फिर वे इस प्रकार कहने लगे, इस गांव के स्वामी गोवर्धनधारी कुंज में पड़े हुए हैं। आइए चलकर उन्हें उस स्थान से बाहर निकाल ले। झाड़ियां इतनी घनी हैं कि हम जंगल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब रास्ता बनाने के लिए कुल्हाड़े तथा कुदाल ले लो। यह सुनकर सारे लोग अत्यंत हर्षित हो माधवेंद्रपुरी के साथ चल पड़े। उनके निर्देशा अनुसार उन्होंने झाड़ियां काट कर रास्ता बनाया और जंगल में प्रवेश किया। जब उन्होंने अर्चा विग्रह को धूल तथा घास से ढका देखा तो सब आश्चर्य तथा हर्ष से भर गए। जब अर्चा विग्रह के शरीर को साफ कर दिया गया तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा, यह विग्रह बहुत भारी है, इसे अकेला एक व्यक्ति हिला नहीं सकता। क्योंकि विग्रह बहुत भारी था, अतएव कुछ बलवान लोग उसे पर्वत की चोटी पर ले जाने के लिए एकत्र हुए। माधवेंद्रपुरी भी वहां गए। एक बड़े पत्थर को सिंहासन बनाया गया और उस पर अर्चा विग्रह को प्रतिष्ठित कर दिया गया। एक दूसरा बड़ा पत्थर विग्रह के सहारे के लिए पीछे लगा दिया गया। गांव के सारे ब्राह्मण पुरोहित जल के 9 घड़े लेकर एकत्र हुए और गोविंद कुंड से पानी लाया गया तथा उसे छाना गया। अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा करते समय गोविंद कुंड से 900 घड़े जल लाया गया। बिगुल तथा ढोल बजने लगे और स्त्रियां गीत गाने लगी। प्रतिष्ठा उत्सव के समय कुछ लोग गा रहे थे तो कुछ नाच रहे थे। गांव का सारा दूध दही तथा घी उत्सव के लिए लाया गया। वहां पर नाना प्रकार के व्यंजन तथा मिठाइयां और अन्य उपहार लाए गए। मैं उन सब का वर्णन कर पाने में असमर्थ हूँ। गांव वाले प्रचुर मात्रा में तुलसी दल, फूल तथा विविध प्रकार के वस्त्र ले आए। तब श्री माधवेंद्रपुरी ने स्वयं अभिषेक स्नान कराने का उत्सव प्रारंभ किया। जब मंत्रोच्चारण से सारा अमंगल दूर हो गया तब अर्चा विग्रह का अभिषेक प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम विग्रह पर प्रचुर तेल मला गया जिससे उनका शरीर चिकना हो उठा। प्रथम स्नान के बाद पंचगव्य से तथा फिर पंचामृत से स्नान कराया गया। फिर 100 घड़ों में लाए गए घी तथा जल से महास्नान कराया गया। महास्नान के बाद पुनः विग्रह को सुगंधित तेल से मलकर उनके शरीर को चिकना किया गया। तत्पश्चात एक शंख में सुगंधित जल भरकर अंतिम अभिषेक संपन्न किया गया। विग्रह का शरीर स्वच्छ करने के बाद उन्हें सुंदर नए वस्त्र पहनाए गए। फिर विग्रह पर चंदन, तुलसी माला तथा अन्य सुगंधित फूलों की मालाएं पहनाई गई। अभिषेक संपन्न हो जाने के बाद अर्चा विग्रह को धूप तथा दीप अर्पित किए गए और विभिन्न प्रकार का भोग अर्पित किया गया। भोग में दही, दूध तथा अनेक मिठाइयां सम्मिलित थी। सर्वप्रथम अर्चा विग्रह को तरह तरह का भोग अर्पित किया गया, फिर नए पात्रों में सुवासित पीने का जल और तब आचमन के लिए जल दिया गया। अंत में मसालेदार पान का भोग लगाया गया। तांबूल तथा पान देने के बाद भोग आरती संपन्न की गई। अंत में हर एक ने विविध प्रार्थनाएं की तथा विग्रह को पूर्ण आत्मसमर्पण के भाव में दंडवत प्रणाम किया। ज्यों ही गांव वालों को पता चला कि अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा होने जा रही है, वे अपने यहाँ से सारा चावल दाल तथा गेहूं का आटा ले आए। यह सामग्री इतनी मात्रा में थी कि पर्वत की चोटी उससे पूरी तरह भर गई। जब गांव वाले चावल दाल तथा आटा ले आए तो गांव के कुम्हार भोजन पकाने के सभी प्रकार के बर्तन ले आए और प्रातः काल से भोजन पकाना प्रारंभ हुआ। 10 ब्राह्मणों ने अन्न पकाया और 5 ब्राह्मणों ने सूखी तथा रसदार सब्जियां पकाई। सारी तरकारियां जंगल से एकत्र किए गए शाख जड़ों तथा फलों से बनाई गई। किसी ने दाल पीस कर बड़े तथा बढ़िया बनाई। इस तरह ब्राह्मणों ने सभी तरह के व्यंजन बनाए। 5-7 व्यक्तियों ने बहुत सी रोटियां बनाई और उन्हें पर्याप्त घी से चुपड़ दिया। सारी सब्जियां दाल तथा भात भी घी से सिक्त थे। पके चावलों का पलाश के पत्तों में ढेर लगा दिया गया। ये पत्ते भूमि पर बिछे नए वस्त्र के ऊपर फैले थे। पके चावल के ढेर के पास ही रोटियों का ढेर था और सारी तरकारियों तथा रसदार व्यंजनों को विभिन्न पात्रों में भरकर उनके चारों ओर रख दिया गया था। तरकारियों के पास दही दूध मट्ठा छिखरीणी खीर मक्खन तथा दही की मलाई भरे पात्र रख दिए गए। इस प्रकार अन्नकूट उत्सव मनाया गया और श्री माधवेंद्रपुरी गोस्वामी ने स्वयं गोपाल को हर वस्तु का भोग लगाया। पीने के लिए अनेक घड़ों में सुगंधित जल भरा गया और भगवान श्री गोपाल ने जो इतने दिनों से भूखे थे अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु खाई। यद्यपि श्री गोपाल ने भोग लगाई गई सारी सामग्री खा ली थी, फिर भी उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से हर वस्तु पूर्ववत बनी रही। माधवेंद्रपुरी ने दिव्य अनुभव से जान लिया कि किस तरह गोपाल द्वारा सब कुछ खा लिया गया और फिर भी भोजन ज्यों का त्यों बना रहा। भगवान के भक्तों से कुछ छिपा नहीं रहता। यह अद्भुत महोत्सव तथा श्री गोपाल जी की प्रतिष्ठा दोनों की व्यवस्था एक ही दिन में हो गई थी। निसंदेह यह सब गोपाल की शक्ति से ही संभव हो सका। इसे भक्तों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं समझ सकता। श्री माधवेंद्रपुरी ने गोपाल को आचमन के लिए जल दिया और चबाने के लिए पान दिए। उसके बाद जब आरती की गई तो सारे लोगों ने गोपाल की जय जयकार की। भगवान के विश्राम का प्रबंध करने के उद्देश्य से श्रील माधवेंद्रपुरी एक नई चारपाई ले आए और उसके ऊपर एक नई चादर बिछाकर शैया प्रस्तुत कर दी गई। चारपाई को चारों ओर से चटाई से ढक कर एक अस्थाई मंदिर बना दिया गया। इस तरह एक शैया थी और उसे ढकने के लिए चट्टाइयां थी। भगवान को शयन कराने के उपरांत माधवेंद्रपुरी ने प्रसाद बनाने वाले सारे ब्राह्मणों को एकत्र किया और उनसे कहा, अब बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर एक को भरपेट भोजन कराइए। वहां पर एकत्र सारे लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ गए और एक एक करके सब ने प्रसाद ग्रहण किया। सबसे पहले सभी ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों को भोजन कराया गया। गोवर्धन गांव के लोगों ने ही नहीं अपितु अन्य गांवों से आए हुए लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने गोपाल विग्रह का दर्शन भी किया और उन्हें प्रसाद भी मिला। माधवेंद्रपुरी का प्रभाव देखकर वहां एकत्र सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि कृष्ण के समय जो अन्नकूट उत्सव मनाया गया था वही अब श्री माधवेंद्रपुरी की कृपा से पुनः मनाया जा रहा था। इस अवसर पर उपस्थित सारे ब्राह्मणों को श्रील माधवेंद्रपुरी ने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा दी और उन्हें विभिन्न सेवा कार्यों में लगा दिया। विश्राम के बाद विग्रह को संध्या समय जगाना चाहिए और तुरंत ही उन्हें कुछ भोजन तथा जल का भोग लगाना चाहिए। जब देश भर में यह प्रचार हो गया कि भगवान गोपाल गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रकट हो चुके हैं तो आसपास के सभी गांव वाले विग्रह का दर्शन करने आए। हर एक गांव वाले ने एक एक करके माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना की कि अन्नकूट उत्सव मनाने के लिए उन्हें एक दिन नियत कर दिया जाए। इस तरह कुछ समय तक दिन प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता रहा। श्री माधवेंद्रपुरी ने दिन भर कुछ नहीं खाया किंतु रात में विग्रह को शयन कराने के बाद उन्होंने दूध से बना प्रसाद खाया। पुनः अगली सुबह अर्चा विग्रह की सेवा प्रारंभ हुई और एक गांव के लोग विविध प्रकार के खाद्य द्रव्य लेकर आ गए। गांव के सारे निवासी गांव भर का सारा अन्न घी दही तथा दूध गोपाल अर्चा विग्रह को भोग लगाने के लिए लाए। दूसरे दिन पहले की तरह अन्नकूट उत्सव मनाया गया। सारे ब्राह्मणों ने भोजन पकाया और गोपाल ने उसे ग्रहण किया। कृष्ण भावना अमृत संपन्न करने के लिए आदर्श स्थान ब्रज भूमि या वृंदावन है, जहां लोग स्वभावतः कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं। विभिन्न गांवों से अनेक लोग गोपाल विग्रह का दर्शन करने आए और उन सब ने पेट भरकर महाप्रसाद ग्रहण किया। जब उन लोगों ने गोपाल के सर्वोत्कृष्ट रूप को देखा तो उनका सारा शोक तथा दुख नष्ट हो गया। व्रज भूमि वृंदावन के आसपास के सारे गांव के लोग गोपाल के प्राकट्य की जानकारी मिलने पर इनका दर्शन करने आए। उन सब ने दिन प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव मनाया। इस तरह न केवल पड़ोसी गांव अपितु अन्य प्रांत भी गोपाल के प्रादुर्भाव के विषय में जान गए। फलतः सभी जगहों से लोग नाना प्रकार के उपहार लेकर आए। मथुरा के बड़े बड़े धनी लोग भी नाना प्रकार के उपहार लेकर आए और उन्होंने भक्ति पूर्वक उन्हें अर्चा विग्रह को अर्पित किया। इस तरह सोना चांदी वस्त्र सुगंधित द्रव्य तथा खाद्य पदार्थों के असंख्य उपहार आए और गोपाल का भंडार प्रतिदिन बढ़ता गया। धनी क्षत्रिय राजपुरुष ने मंदिर बनवा दिया। किसी ने भोजन पकाने के बर्तन दे दिए और किसी ने चार दीवारियां बनवा दी। ब्रज भूमि में रहने वाले हर परिवार ने एक एक गाय दी। इस तरह हजारों गायें गोपाल की संपत्ति बन गई। अंत में बंगाल से दो सन्यासी ब्राह्मण वहां आए। माधवेंद्रपुरी को वे बहुत अच्छे लगे और उन्हें वृंदावन में रखकर सारी सुविधाएं प्रदान की। तब माधवेंद्रपुरी ने उन दोनों को दीक्षा दी और भगवान की दैनिक सेवा का कार्यभार सौंप दिया। यह सेवा लगातार होती रही और अर्चा विग्रह की पूजा अत्यंत सुंदर ढंग से होने लगी थी। इससे माधवेंद्रपुरी अति आनंदित हुए। इस प्रकार दो वर्षों तक मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा अत्यंत ऐश्वर्य के साथ चलती रही। तब एक दिन माधवेंद्रपुरी ने एक सपना देखा। सपने में माधवेंद्रपुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं, मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है, तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। तुम जगन्नाथपुरी से चंदन लाओ, कृपया तुरंत जाओ, क्योंकि यह काम कोई और नहीं कर सकता, इसलिए तुम ही करो। इस स्वप्न को देखकर माधवेंद्रपुरी गोस्वामी भगवत प्रेम के भाव के कारण अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान के आदेश का पालन करने के उद्देश्य से वे बंगाल जाने के लिए पूर्व की ओर चल पड़े। चलने के पूर्व माधवेंद्रपुरी ने नियमित सेवा पूजा के लिए सारी व्यवस्था कर दी और उन्होंने विभिन्न लोगों को विविध कार्यों में लगा दिया। फिर गोपाल की आज्ञा लेकर वे बंगाल के लिए चल पड़े। जब माधवेंद्रपुरी शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे तो माधवेंद्रपुरी में उर्मी पूर्ण भगवत प्रेम को देखकर आचार्य अत्यंत हर्षित हुए। अद्वैत आचार्य ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा देने की प्रार्थना की। उन्हें दीक्षा देने के बाद माधवेंद्रपुरी दक्षिण भारत के लिए चल पड़े। दक्षिण भारत जाते समय माधवेंद्रपुरी रमुणा गए, जहां गोपीनाथ स्थित हैं। विग्रह की सुंदरता देखकर माधवेंद्रपुरी भाव विभोर हो गए। मंदिर के बरामदे में जहां से लोग सामान्यतया अर्चा विग्रह का दर्शन करते थे, माधवेंद्रपुरी ने कीर्तन और नृत्य किया। फिर वे वहां बैठ गए और उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा कि अर्चा विग्रह को किस किस वस्तु का भोग लगाया जाता है। प्रबंध की उत्कृष्टता से माधवेंद्रपुरी ने अनुमान लगाया कि वहां अवश्य उत्तम भोजन ही अर्पित किया जाता होगा। माधवेंद्रपुरी ने सोचा, मैं पुजारी से पूछूंगा कि गोपीनाथ को किस प्रकार का भोजन अर्पित किया जाता है, जिससे हम भी अपने रसोई घर में उनकी व्यवस्था करके वैसा ही भोजन श्री गोपाल को अर्पित कर सके। जब ब्राह्मण पुजारी से इस विषय में पूछा गया, तब उसने विस्तार पूर्वक बतलाया कि गोपीनाथ के अर्चा विग्रह को कौन कौन से भोग अर्पित किए जाते हैं। ब्राह्मण पुजारी ने कहा, संध्या समय अर्चा विग्रह को मिट्टी के 12 पात्रों में खीर का भोग लगाया जाता है, क्योंकि इसका स्वाद अमृत जैसा होता है, अतएव यह अमृत केली कहलाता है। यह खीर सारे जगत में गोपीनाथ खीर के नाम से विख्यात है। ऐसी खीर दुनिया में अन्यत्र कहीं भी अर्पित नहीं की जाती है। जब माधवेंद्रपुरी ब्राह्मण पुजारी से बातें कर रहे थे, तब खीर का भोग अर्चा विग्रह के समक्ष लगाया गया था। यह सुनकर माधवेंद्रपुरी ने इस प्रकार विचार किया, यदि मुझे बिना मांगे थोड़ी सी खीर मिल जाए तो मैं उसे चख लूं और ऐसी ही खीर अपने भगवान गोपाल के लिए तैयार करूं। जब माधवेंद्रपुरी को खीर चखने की इच्छा हुई तो उन्हें बहुत लज्जा आ गई, अतएव वे तुरंत ही भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। जब वे इस प्रकार भगवान विष्णु का चिंतन कर रहे थे, तब भोग का अर्पण समाप्त हो गया और आरती शुरू हो गई। आरती समाप्त होने के बाद माधवेंद्रपुरी ने अर्चा विग्रह को नमस्कार किया और फिर मंदिर से बाहर चले गए। उन्होंने किसी से और कुछ भी नहीं कहा। श्री माधवेंद्रपुरी भिक्षा मांगने से बचते थे। वे पूर्णतया विरक्त और भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन थे। बिना मांगे यदि कोई खाने के लिए कुछ दे देता तो खा लेते, अन्यथा वे उपवास करते थे। माधवेंद्रपुरी जैसा परम हंस सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति से संतुष्ट रहता है। भौतिक भूख प्यास उनके कार्यकलापों में बाधक नहीं बन सकते। जब उन्हें अर्चा विग्रह को अर्पित थोड़ी खीर खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने सोचा कि उनसे अपराध हुआ है, क्योंकि वे अर्चा विग्रह को भोग लगाई जा रही वस्तु को खाना चाह रहे थे। माधवेंद्रपुरी मंदिर से बाहर चले गए और گاؤں کے خالی بازار میں بیٹھ گئے۔ وہ وہاں بیٹھ کر کیرتن کرنے لگے۔ اسی بیچ مندر کے پجاری نے ارچا وگرہ کو شیان کرا دیا۔ پجاری اپنا دینک کاریہ سماپت کر کے آرام کرنے لگا۔ سپنے میں اس نے دیکھا کہ گوپی ناتھ ارچا وگرہ آ کر اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ ارچا وگرہ اس پرکار بولے، ہے پجاری کرپیا اٹھو اور مندر کا دوار کھولو۔ میں نے کھیر کا ایک پاتر سنیاسی مادھویندر پوری کے لیے رکھ لیا ہے۔ یہ کھیر کا پاتر میرے کپڑے کے پردے کے پیچھے ہے۔ تم میری مایا کے کارن اس پاتر کو نہیں دیکھ پائے۔ مادھویندر پوری نامک ایک سنیاسی نرجن بازار میں بیٹھا ہے۔ تم کھیر کے اس پاتر کو میرے پیچھے سے اٹھا لو اور جا کر اسے دے دو۔ سوپن پورا ہونے پر پجاری ترنت چیا سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ارچا وگرہ کے کچھ میں پرویش کرنے کے پورو سنان کرنا اچت سمجھا۔ پھر اس نے مندر کا دوار کھولا۔ ارچا وگرہ کے نردیشانوسار پجاری نے کھیر کا پاتر کپڑے کے پردے کے پیچھے پایا۔ اس نے وہ پاتر ہٹایا اور اس ستھان کو صاف کیا جہاں وہ رکھا تھا۔ اس کے بعد وہ مندر سے باہر چلا گیا۔ وہ مندر کا دوار بند کر کے کھیر کا پاتر لے کر گاؤں میں چلا گیا۔ اس نے مادھویندر پوری کی کھوج میں پرتیک ہاتھ میں جا کر پکارا۔ وہ پجاری کھیر کا پاتر اٹھا کر پکارنے لگا، جس کا نام مادھویندر پوری ہو وہ آ کر یہ پاتر لے جائے۔ گوپی ناتھ نے تمہارے لیے اس کھیر کے پاتر کی چوری کی ہے۔ پجاری نے آگے کہا، کیا مادھویندر پوری نامک سنیاسی آ کر یہ کھیر پاتر لیں گے اور اتیانت سکھ پوروک پرساد گرہن کریں گے؟ آپ تو تینوں لوگوں میں پرم بھاگیشالی ویکتی ہو۔ یہ نمنترن سن کر مادھویندر پوری سامنے آئے اور انہوں نے اپنا پریچے دیا۔ تب پجاری نے انہیں وہ کھیر پاتر دیا اور دنڈوت پرنام کیا۔ جب مادھویندر پوری کو کھیر پاتر کی کتھا وستار سے بتلائی گئی تو وہ کرشن پریم کے آنند میں مگن ہو گئے۔ شریلا مادھویندر پوری میں پریم بھاو کے لکشن دیکھ کر پجاری آشچری چکت ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ کرشن ان کے پرتی اتنے کرتجھ کیوں ہو گئے تھے، اور اس نے دیکھا کہ کرشن کا یہ کاریہ اپیوکت تھا۔ مادھویندر پوری کو نمسکار کر کے وہ پجاری مندر لوٹ گیا۔ تب بھاوا ویش میں مادھویندر پوری نے کرشن دوارا پردت کھیر گرہن کی۔ اس کے بعد مادھویندر پوری نے اس پاتر کو دھویا اور توڑ کر اسے ٹھنڈ ٹھنڈ کر دیا۔ پھر انہوں نے ان کھنڈوں کو باہی وستر میں باندھ کر ٹھیک سے رکھ دیا۔ مادھویندر پوری پرتی دن اس مٹی کے پاتر کا ایک کھنڈ کھاتے، اور کھاتے ہی وہ بھاوا ویش میں آ جاتے۔ یہ سب ادبھت کتھائیں ہیں۔ اس پاتر کو ٹھنڈ ٹھنڈ کر کے اپنے وستر میں باندھ لینے کے بعد مادھویندر پوری سوچنے لگے، بھگوان نے مجھے کھیر کا پاتر دیا ہے اور کل پراتہ کال جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو بہت بڑی بھیڑ لگ جائے گی۔ یہ سوچ کر شری مادھویندر پوری نے اسی ستھان پر گوپی ناتھ جی کو دنڈوت پرنام کیا اور پراتہ ہونے کے پورو ہی ریمونا سے چلے گئے۔ مادھویندر پوری چلتے چلتے جگن ناتھ پوری پہنچے جو نیلاچل کے نام سے بھی وکھیات ہے۔ وہاں انہوں نے بھگوان جگن ناتھ جی کے درشن کیے اور پریما آنند وش ویہول ہو گئے۔ شریلا مادھویندر پوری بھگوت پریم سے بابا بھوت ہو کر کبھی اٹھ کھڑے ہوتے اور کبھی بھومی پر گر پڑتے، کبھی وہ ہنستے ناچتے اور گاتے۔ اس پرکار جگن ناتھ وگرہ کے درشن کر کے انہوں نے دیویا آنند کا انوبھو کیا۔ جب مادھویندر پوری جگن ناتھ پوری آئے تو لوگ ان کی دیویا خیاتی سے پریچت تھے۔ آج ایو لوگوں کی بھیڑ آنے لگی اور بھکتی وش ان کا طرح طرح سے سمان کرنے لگی۔ منشیہ بھلے ہی نہ چاہتا ہو پھر بھی بداتا دوارا نیت پرتشتا اسے مل ہی جاتی ہے۔ نسندیہ بھکت کی دیویا پرتشتا سمگر وشو میں پھیل جاتی ہے۔ اپنی پرتشتا کے بھے سے مادھویندر پوری ریمونا چھوڑ کر چلے گئے، کنتو بھگوت پریم دوارا پردت پرتشتا اتنی اتکرشت ہے کہ وہ بھکت کے ساتھ ساتھ جاتی ہے مانو اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ مادھویندر پوری جگن ناتھ پوری چھوڑنا چاہ رہے تھے کیونکہ لوگ ان کا مہان بھکت کے روپ میں آدر کر رہے تھے، کنتو اس سے گوپال وگرہ کے لیے چندن کی لکڑی ایکتر کرنے میں بادھا اتپن ہونے کا بھے تھا۔ شری مادھویندر پوری نے وہاں پر جگن ناتھ جی کے سبھی سیوکوں تتھا مہان بھکتوں سے شری گوپال کے پراکٹیہ کی کتھا بتلائی۔ جب جگن ناتھ پوری کے سارے بھکتوں نے سنا کہ گوپال وگرہ چندن چاہتے ہیں تو سبھی ہرچت ہو کر چندن ایکتر کرنے کا پریاس کرنے لگے۔ جو لوگ راج ادھیکاریوں سے پریچت تھے وہ ان سے ملے اور کپور تتھا چندن مانگ مانگ کر ایکتر کیا۔ اس چندن کو لے جانے کے لیے مادھویندر پوری کو ایک براہمن تتھا ایک سیوک دیا گیا، انہیں آوشیک مارگ ویہ بھی دیا گیا۔ راستے کے چنگی وصولنے والوں سے بچنے کے لیے مادھویندر پوری کو سرکاری افسروں سے چھوٹ کے آوشیک کاغذات دلائے گئے۔ یہ کاغذات ان کے ہاتھ میں دیے گئے۔ اس طرح مادھویندر پوری چندن سہت ورنداون کے لیے چل پڑے اور کچھ دنوں کے بعد وہ پنہ ریمونا گاؤں تتھا وہاں کے گوپی ناتھ مندر میں پہنچے۔ جب مادھویندر پوری گوپی ناتھ کے مندر پہنچے تو انہوں نے بھگوان کے چرن کملوں پر انیک بار نمسکار کیا۔ وہ پریم بھاو میں ستت نرتیا اور گان کرنے لگے۔ جب گوپی ناتھ کے پجاری نے مادھویندر پوری کو پھر سے آیا دیکھا تو اس نے انہیں سادر نمسکار کیا اور انہیں کھیر پرساد کھلایا۔ اس رات مادھویندر پوری نے مندر میں وشرام کیا۔ किंतु रात्रि के अंत में उन्हें दोबारा स्वप्न दिखलाई पड़ा। माधवेंद्रपुरी ने सपने में देखा कि गोपाल उनके सामने आकर कह रहे हैं, हे माधवेंद्रपुरी, मुझे पहले ही सारा चंदन तथा कपूर प्राप्त हो चुका है। तुम सारे चंदन को कपूर के साथ गिनकर तब तक गोपीनाथ के विग्रह पर इसका प्रतिदिन लेप करते रहो, जब तक यह समाप्त न हो जाए। मेरे शरीर तथा गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, वे अभिन्न हैं। अतएव यदि तुम गोपीनाथ के शरीर पर चंदन लेप करते हो तो वह मेरे शरीर पर लेप के समान ही है। इस प्रकार मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा। मेरे आदेशानुसार कार्य करने में तुम तनिक भी संदेह मत करो। मुझ पर विश्वास रखकर जो आवश्यक हो वह करो। इतना आदेश देकर गोपाल अंतर्धान हो गए और श्रील माधवेंद्रपुरी जाग गए। उन्होंने तुरंत गोपीनाथ के सभी सेवकों को बुलाया और वे वहां उपस्थित हो गए। माधवेंद्रपुरी ने कहा, गोपीनाथ के विग्रह पर इस कपूर तथा चंदन का लेप करो, जिसे मैं वृंदावन स्थित गोपाल के लिए लाया हूँ। इसे नियमित रूप से प्रतिदिन करो। यदि गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप किया जाए तो गोपाल शीतल हो जाएंगे। आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं। उनका आदेश सर्वशक्तिमान है। गोपीनाथ के सेवक यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि गर्मियों में यह सारा चंदन गोपीनाथ के शरीर पर लेप करने के लिए प्रयोग होगा। माधवेंद्रपुरी ने कहा, ये दो सेवक नियमित रूप से चंदन घितेंगे और तुम सहायता के लिए अन्य दो व्यक्ति और ले लो, उनका वेतन मैं दूंगा। इस तरह प्रतिदिन गोपीनाथ जी को चंदन घिसकर लेप किया जाता रहा। इससे गोपीनाथ के सेवक अत्यंत प्रसन्न थे। इस प्रकार पूरा चंदन समाप्त होने तक गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन का लेप होता रहा और माधवेंद्रपुरी तब तक वहीं रहे। गर्मी के अंत में माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी लौट आए, जहां उन्होंने बड़े ही आनंद से चातुर्मास्य बिताया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं माधवेंद्रपुरी के अमृतमय गुणों की प्रशंसा की और जब वे यह सब भक्तों को सुना रहे थे तो उन्होंने स्वयं भी इसका आस्वादन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद से यह निर्णय करने के लिए कहा कि क्या इस जगत में माधवेंद्रपुरी के समान और कोई भाग्यशाली है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माधवेंद्रपुरी इतने भाग्यशाली थे कि साक्षात भगवान कृष्ण उनके समक्ष दूध देने के बहाने प्रकट हुए। भगवान ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में तीन बार आदेश दिया। माधवेंद्रपुरी के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं भगवान कृष्ण गोपाल विग्रह के रूप में प्रकट हुए और उनकी सेवा स्वीकार करके भगवान ने सारे जगत का उद्धार किया। माधवेंद्र पुरी के ही कारण भगवान गोपीनाथ ने खीर पात्र चुराया। इस तरह वे खीर चोरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। माधवेंद्र पुरी ने गोपीनाथ के श्री विग्रह पर चंदन का लेप किया और इस प्रकार वे भगवत प्रेम से विह्वल हो गए। मुसलमानों द्वारा शासित भारतीय प्रांतों में चंदन तथा कपूर लेकर यात्रा करना अत्यंत असुविधाजनक था। इसके कारण माधवेंद्र पुरी कष्ट में पड़ सकते थे। यह गोपाल विग्रह को ज्ञात हो गया। भगवान अत्यधिक दयालु हैं और अपने भक्तों से अनुरक्त रहते हैं। अतएव जब गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाया गया तो माधवेंद्र पुरी का श्रम सार्थक हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्र पुरी के उत्कट प्रेम के आदर्श पर अपना निर्णय देने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उनके सारे प्रेम व्यवहार असाधारण हैं। निसंदेह उनके कार्यकलापों को सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने आगे बतलाया, श्री माधवेंद्र पुरी अकेले रहा करते थे। वे पूर्ण विरक्त थे और सदैव मौन रहते थे। वे किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखते थे और संसारी बातें करने के भय से अकेले रहते थे। गोपाल जी का दिव्य आदेश पाकर इस महापुरुष ने मांग कर चंदन एकत्र करने हेतु हजारों मील की यात्रा की। माधवेंद्र पुरी ने भूखे रहने पर भी किसी से खाने के लिए भोजन नहीं मांगा। इस विरक्त पुरुष ने श्री गोपाल के निमित्त चंदन का भार वहन किया। अपनी निजी सुख सुविधा की चिंता न करके माधवेंद्र पुरी एक मन चंदन लगभग 82 पौंड तथा 20 तोला लगभग 8 औंस कपूर गोपाल के विग्रह को लेप करने के लिए उठा लाए। यही दिव्य आनंद उनके लिए पर्याप्त था। क्योंकि उड़ीसा प्रांत से बाहर चंदन ले जाने पर प्रतिबंध था, अतएव चुंगी अधिकारी ने पूरा चंदन अपने पास रख लिया। किंतु माधवेंद्र पुरी ने उसे सरकार द्वारा दिया गया विमोचन प्रपत्र दिखलाया, जिससे वे कठिनाइयों से बच गए। माधवेंद्र पुरी वृंदावन की लंबी यात्रा के दौरान मुस्लिमों के द्वारा शासित एवं अनगिनत पहरेदारों से भरे हुए प्रांतों से गुजरते हुए तनिक भी चिंतित नहीं हुए। यद्यपि माधवेंद्र पुरी के पास एक छद्म भी नहीं था, किंतु वे चुंगी अफसरों के पास से निकलने के लिए तनिक भी भयभीत नहीं थे। उनका एकमात्र आनंद गोपाल के लिए वृंदावन तक चंदन का बोझ उठाकर ले चलने में था। उत्कट भगवत प्रेम का यही स्वाभाविक परिणाम होता है। भक्त निजी असुविधाओं या विघ्नों पर विचार नहीं करता। वह सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना चाहता है। श्री गोपाल यह दिखलाना चाहते थे कि माधवेंद्र पुरी कृष्ण से कितना प्रगाढ़ प्रेम करते थे। अतएव उन्होंने नीलाचल से चंदन तथा कपूर लाने के लिए उनसे कहा। अत्यंत कष्ट उठाकर तथा अत्यधिक परिश्रम करके माधवेंद्र पुरी चंदन को रेमुना ले आए। फिर भी वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कठिनाइयों की तनिक भी चिंता नहीं की। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल ने माधवेंद्र पुरी के उत्कट प्रेम की परीक्षा करने के लिए उन्हें नीलाचल से चंदन लाने का आदेश दिया। और जब माधवेंद्र पुरी इस परीक्षा में खरे उतरे तो भगवान उन पर अत्यंत कृपालु हुए। भक्त तथा भक्त के प्रिय श्री कृष्ण के मध्य प्रेमा भक्ति के ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन दिव्य है। साधारण व्यक्ति के लिए इसे समझ पाना संभव नहीं है। सामान्य व्यक्तियों में इतनी क्षमता ही नहीं होती। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्र पुरी का प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा। यह श्लोक चंद्रमा के समान है। इसने सारे जगत को प्रकाशमान किया है। जिस प्रकार निरंतर घिसने से मलय चंदन की सुगंध बढ़ती है, उसी तरह इस श्लोक पर मनन करने से इसकी महत्ता समझ में आती है। जिस प्रकार रत्नों में कौस्तुभ मणि को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है, उसी तरह भक्ति के रस से संबंधित काव्य में इस श्लोक को सर्वोत्तम माना जाता है। वास्तव में इस श्लोक को श्रीमती राधा रानी ने स्वयं कहा था और उनकी कृपा से ही यह माधवेंद्र पुरी के शब्दों में प्रकट हुआ। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के काव्यत्व का आस्वादन किया है। इसे समझ पाने में कोई चौथा व्यक्ति समर्थ नहीं है। पृथ्वी पर जीवन के अंतिम काल में माधवेंद्र पुरी इस श्लोक को बारंबार पढ़ते थे। इस प्रकार इस श्लोक का उच्चारण करते करते उन्होंने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किया। हे नाथ, हे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरापति, मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे? आपका दर्शन न कर पाने के कारण मेरा विशुद्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? यह श्लोक पढ़ते ही श्री चैतन्य महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। वे विह्वल थे, अतएव अपने वश में नहीं थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में भूमि पर गिर पड़े तो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करते हुए फिर से उठ बैठे। प्रेमोन्माद प्रकट करते हुए महाप्रभु हुंकार करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। कभी वे हंसते, कभी रोते, कभी नाचते और कभी गाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा श्लोक नहीं सुना पाए। उन्होंने बारंबार इतना ही कहा, आई दीन, आई दीन। इस तरह वे बोल नहीं सके और उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। कंपकंपी, पसीना, हर्ष के अश्रु, स्तंभ, शरीर का रंग फीका पड़ना, निराशा, खिन्नता, स्मृति हास, गर्व, हर्ष तथा दीनता, ये सारे लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिख रहे थे। इस श्लोक ने प्रेम भाव के द्वार खोल दिए और गोपीनाथ के सारे सेवकों ने महाप्रभु को बाबा वेश में नृत्य करते देखा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर अनेक लोगों की भीड़ लग गई तो वे बाह्य चेतना में आए। उसी बीच अर्चा विग्रह को भोग का समर्पण समाप्त हुआ और सुमधुर ध्वनि के साथ आरती संपन्न हुई। अर्चा विग्रहों को शयन कराने के बाद पुजारी मंदिर के बाहर आ गया और उसने खीर के सारे 12 पत्र श्री चैतन्य महाप्रभु को दे दिए। जब गोपीनाथ महाप्रसाद के सारे खीर पात्र श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष रखे गए तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्तों को खिलाने के लिए उन्होंने 5 पात्र स्वीकार किए। 6-7 पात्र आगे बढ़ाकर पुजारी को दे दिए। फिर महाप्रभु द्वारा दिए गए 5 पात्रों की खीर 5 भक्तों में बांटी गई और उन सब ने प्रसाद ग्रहण किया। गोपीनाथ विग्रह से अभिन्न श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही खीर पात्रों का आस्वादन कर चुके थे, फिर भी भक्ति प्रकट करने के लिए उन्होंने भक्त के रूप में पुनः खीर खाई। वह रात्रि महाप्रभु ने उस मंदिर में संकीर्तन करने में व्यतीत की। प्रातःकाल मंगल आरती देखकर वे वहां से चल पड़े। इस तरह स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल जी, गोपीनाथ तथा श्री माधवेंद्र पुरी के दिव्य गुणों का आस्वादन अपने श्री मुख से किया। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य की दिव्य महिमा तथा भगवत प्रेम के भाव की पराकाष्ठा दोनों का वर्णन किया है। जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति से इस कथा को सुनता है उसे श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भगवत प्रेम का दंश प्राप्त होता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत की मध्य लीला के चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें श्री माधवेंद्र पुरी की भक्ति का वर्णन है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम